दर्शन दिवस जब आने लगता है तो वातावरण में, बाहरी वातावरण में और आंतरिक वातावरण में, हमारे मन में, भावनाओं में, हमारी चेतना में कुछ घटित होने लगता है। यह है यहाँ का जादू। श्री मां वातावरण में हम लोग सब यहाँ एकत्रित होते हैं। परंपरा से हम लोग इसे कह रहे हैं श्री अरविंद सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस। चेतना की भूमिका में एक हम लोगों का शब्द है, भारतीय शब्द, जो कुछ विशेषता हमें संकेत करता है। मैं अपनी चेतना के अनुसार कहूँगा, हम लोगों का समागम हो रहा है। समागम हम लोगों का हो रहा है और यह समागम स्वयं एक प्रकार से हमें तैयार करता है दर्शन के लिए। हम यहाँ एकत्रित होते हैं केवल गपशप के लिए नहीं, चाहे जो कुछ बातचीत करने के लिए नहीं। हमारे यहाँ हमारे केंद्रों में क्या हो रहा है उसकी भी शायद चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करते। ये महत्वपूर्ण है कि हम सब मिलकर के, बैठ करके, चिंतन करके, परस्पर चर्चा करके कुछ अपने को तैयार करें उसके लिए जिसकी ओर हम लोगों को अग्रसर होते जाना है। इसी भूमिका में जो यहाँ वार्ताएं होती हैं, प्रायः सभी वार्ताएं एक विशेष लक्ष्य लिए होती हैं, उनका कोई विशेष प्रयोजन भी होता है, उनमें एक आमंत्रण भी होता है, उनमें एक संकेत भी होता है, उनमें हो सकता है किसी किसी को कुछ उद्बोधन का भी अनुभव हो। लेकिन ये जो विषय हैं जिन पर की बातचीत होती है वो विषय भी साधारण नहीं हैं, किंतु केवल बोलने वाले क्या बोल रहे हैं यहाँ तक सब कुछ सीमित नहीं है। हम लोग सब मिलकर के क्या चिंतन कर रहे हैं यह महत्वपूर्ण है, और सब मिलकर के चिंतन करते ही हैं यह भी अपने आप में सत्य है। यह योग भूमि है और हम सब लोग योग की तैयारी में हैं और एक ऐसी विशाल भूमिका लेकर के चल रहे हैं जिस विशाल भूमिका में श्री अरविंद का ये उद्घाटन हो चुका है। हमने कितना उसको समझा है नहीं समझा है ये अलग बात है, लेकिन ये उद्घाटन हो चुका है उनका, एक महावाक्य हमको मिल चुका है कि संपूर्ण जीवन योग है। लेकिन थोड़े सावधान होने की आवश्यकता है। यह जो वाक्य है, महावाक्य जिसको हम लोग कहते हैं, संपूर्ण जीवन योग है, इस महावाक्य में बहुत बड़ा आमंत्रण है, बहुत बड़ा निमंत्रण है। श्री अरविंद कहते हैं, ऑल लाइफ इज योगा। साथ ही साथ उन्हीं की वाणी है, इन द राइट व्यू बोथ ऑफ योगा एंड ऑफ लाइफ, ऑल लाइफ कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली इज ए योगा। तो ऑल लाइफ इज योगा, इसको तो हम लोगों ने याद कर लिया। इन द राइट व्यू बोथ ऑफ योगा एंड ऑफ लाइफ, जीवन के प्रति हमारी दृष्टि क्या है, जीवन को हम क्या समझते हैं, योग के विषय में हमारी क्या धारणा है, योग के विषय में हमारी क्या दृष्टि है, हमने क्या समझा है, हमने क्या पढ़ा है, क्या चिंतन किया है, जीवन के विषय में क्या चिंतन किया है, क्या समझा है, यह आसान बात नहीं है। लेकिन आसान हो या मुश्किल हो, जरूरी है, हम सब लोगों के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन को, विश्व जीवन को, संपूर्ण प्रकृति को इसको सब बहुत गहराई से समझें और योग को भी बहुत गहराई से समझें, तब श्री अरविंद का वह वाक्य अपना अर्थ खोलेगा, संपूर्ण जीवन योग है। किंतु साथ ही साथ संपूर्ण जीवन योग है, यह एक बहुत बड़ा आदर्श भी है, यही सत्य है, यही यथार्थ है और यही आदर्श है। आदर्श की भूमिका में हम यह समझ पाते हैं धीरे धीरे करके कि संपूर्ण जीवन को योग युक्त होना है, संपूर्ण जीवन योग ही है। यह प्राकृत सत्य है, नैसर्गिक सत्य है। मनुष्य इस भ्रांति में न पड़ जाए कि वो जो कुछ कर रहा है, जैसा है, जो उसकी वृत्तियां हैं, जो उसके संस्कार हैं, जो उसके जैसा उसका चरित्र है, जो कुछ व्यवहार वो कर रहा है, वो सब योग युक्त है। यह बहुत बड़ी भ्रांति होगी। इससे बड़ी कोई भ्रांति हो नहीं सकती कि मनुष्य यह मान ले कि वह जैसा है, जो कुछ कर रहा है, जो कुछ करता है, जो कुछ योजना बनाता है, जो कुछ भी उसकी प्रवृत्तियां हैं, वह सब योगमयी हैं। इससे बड़ी कोई भ्रांति नहीं होगी। सत्य यह है कि जब मनुष्य देखने लगता है अपने जीवन को और ईमानदारी से वह देखता है, तो उसे पता लगता है कि सत्य जो नैसर्गिक है उससे मनुष्य बहुत दूर हट गया है। नैसर्गिक सत्य है कि संपूर्ण प्रकृति योगमयी है, संपूर्ण प्रकृति में जो कुछ घटित हो रहा है वह योग है। यह नैसर्गिक सत्य है। जब हम अपने को देखने लगते हैं तो हमें पता लगता है कि हम तो बहुत दूर हट गए हैं, हम वियुक्त हैं, अयुक्त हैं। अपने जीवन को जब देखते हैं, हमारी वृत्तियां क्या हैं, हमारा व्यवहार क्या है, हमारा चरित्र क्या है, हमारे विचार क्या हैं, हमारी योजनाएं क्या हैं, हमारी चेतना क्या है, तो स्पष्ट होता है कि हमारी चेतना अयुक्त है, वियुक्त है, उसमें योग नहीं है। और आवश्यकता होती है कि हम ठीक से अपने जीवन के सच्चे स्वरूप में प्रतिष्ठित हों और आगे बढ़ें, तब यह महसूस होता है कि योग की आवश्यकता है और योग को जीवन में धारण करना है, योग हमारे जीवन में होना चाहिए। वहां श्री अरविंद का आश्वासन है, संपूर्ण जीवन योग युक्त हो सकता है, होना चाहिए, होगा। संपूर्ण जीवन योग है, यह प्राकृत सत्य है। संपूर्ण जीवन योग युक्त हो सकता है, होना चाहिए और होगा, यह आश्वासन है। इस भूमिका में संपूर्ण जीवन एक व्यापक योग है, जीवन व्यापी योग है। इसी भूमिका में योग के भिन्न भिन्न जो पक्ष हैं, भिन्न भिन्न जो उसकी धाराएं हैं, वे हमारे सामने आती हैं। उन धाराओं में संभवतः हम सभी लोग परिचित हैं कि हमारा, हमारे विचार, हमारा आचार, हमारी धारणा, हमारे संकल्प, हमारा कर्म, हमारी वृत्तियां, हमारा चिंतन, सब कुछ योग युक्त हो तो विचार और बोध, ये हमारे भीतर बहुत बड़ी शक्ति है। विचार और बोध की शक्ति योग युक्त हो, वह ज्ञान योग की धारा होगी। हमारे हृदय की समस्त भावनाएं, हमारे हृदय के जितने प्रीति और रसोन्मुखी वृत्तियां जो हमारे भीतर हैं, जितने हमारे भीतर फीलिंग्स और इमोशंस जिनको हम कहते हैं, वे सब भगवदुन्मुखी हों, भगवान के साथ जुड़ें, तो वह हमारे जीवन को एक प्रकार से भक्ति योग में प्रवेश कराएगा। किंतु योग केवल यहाँ तक सीमित नहीं है कि हमारी भावनाएं और हमारे विचार और हमारा बोध भगवदुन्मुखी बने। आवश्यकता यह भी है कि हमारा संपूर्ण व्यावहारिक जीवन, कर्ममय जीवन, जो हमारी प्रवृत्तियों से संबंधित है, हमारे संकल्प से संबंधित है, हमारे निश्चय से संबंधित है, और व्यापार हो रहा है, हम कितना व्यापार कर रहे हैं व्यक्तिगत जीवन में, सम्मिलित जीवन में, वह सब का सब, जितना व्यवहार मनुष्य का हो रहा है, जितना मनुष्य का एक एक प्राकृत जीवन है, प्राकृत जीवन सक्रिय जीवन वह भी योग युक्त हो, इसका समारंभ गीता में हुआ है। केवल समारंभ नहीं हुआ है, श्री अरविंद की वाणी है, द ग्रेटेस्ट गॉस्पल ऑफ स्पिरिचुअल वर्क्स एज येट गिवन टू द रेस, द होल ह्यूमन रेस, द परफेक्ट सिस्टम ऑफ कर्म योग गिवन टू मैन इन द पास्ट, नोन टू मैन इन द पास्ट, इज टू बी फाउंड इन द भगवद गीता। गीता से परिचय भारतीय लोगों का काफी है, किंतु यह परिचय दो प्रकार से काम करता है, यही परिचय सहायक होता है और यही परिचय एक प्रकार से बाधक बन जाता है। कोई चीज अपने बहुत परिचित है, कर्मयोग कर्मयोग कर्मयोग, बहुत परिचित शब्द है कर्मयोग, हम लोगों के लिए बहुत परिचित, किंतु हमारे मन में भाव क्या जगता है, क्या धारणा बनती है, और उन धारणाओं को अगर देखने लगते हैं, वो अपनी बात है, हमारे ही हृदयों की बात है, हमारी ही मान्यताओं की बात है, तो अनेक प्रकार के व्यामिश्र, जिन्हें कन्फ्यूजन में कह सकता हूं, अनेक प्रकार के व्यामिश्र हमें मिलते हैं, अनेक प्रकार, अनेक बार लोग समझते हैं अरे कर्म करो और अपनी ड्यूटी पूरी करो, घर द्वार संसार समाज इन सब में जो कुछ तुम्हें करना है उसका खूब पालन करो, किंतु कुछ उनसे परिणाम में कुछ आशा मत रखो, ये कर्मयोग है। कई बार ऐसा मन में आया, केवल निष्काम कर्म को हम कर्मयोग कह देते हैं, निष्काम कर्म निष्काम कर्म है, माने कर्म करो और किसी प्रकार की आकांक्षा और कामना न हो तो ठीक है, लेकिन योग शब्द का एक अपना अभिप्राय है, योग शब्द की अपनी एक जबरदस्त डिमांड है, योग का मतलब है मिलना, एक हो जाना, भगवान के साथ युक्त हो जाना। तो जिन कर्मों के द्वारा हम भगवान के साथ युक्त होते हैं और जो कर्म युक्त होने के पश्चात स्वयं हमारे जीवन में प्रवाहित होते हैं, निस्सृत होते हैं, वह होगा कर्मयोग। केवल समाज की ड्यूटी पूरी करो और घर द्वार की ड्यूटी पूरी करो और जो देश काल की आवश्यकता है उनको पूरी करो और अपनी आकांक्षा मत रखो, तो यह योग नहीं होगा। ये तो बहुत लोग कर रहे हैं, कभी कभी गीता को आधार बना करके या अपनी धारणाओं को लेकर के हमारे मन में आता है कि अपने कर्म को कुशलता के साथ करो, अच्छी तरह से करो, उसमें किसी प्रकार का अधूरापन न हो। गीता को हम कोट कर देते हैं, योग कर्म सुकौशलम, और फिर मानने लगते हैं कि अगर हमने अपना काम पूरी तरह से कर दिया तो योग हो गया। अगर ऐसा है तो शायद जितने जापानीज लोग हैं वो सब योगी हैं, क्योंकि एफिशिएंसी, परिपूर्णता, कुशलता आज का एक मंत्र हो गया है, व्यावहारिक जीवन का मंत्र है, कुशल बनो। कुशल बनो तो कुशल किस चीज में बनो, सब चीज में कुशल बनो, अपने व्यापार में भी कुशल बनो, प्रोडक्शन में कुशल बनो, और धोखा देने तो भी कुशल बनो, और चोरी करनी है तो भी कुशल बनो, और एक कौशल का एक वो है कुशल बनो, एफिशिएंसी एंड परफेक्शन, उसके नाम पर मैनेजमेंट के कोर्सेज चलते हैं, कुशल बनो। हमको समझना होगा कि केवल कुशलता योग नहीं है, भगवान के साथ हमारी चेतना मिलती है या नहीं मिलती है, ये मानना कि अपना काम हमने पूरा कर दिया भगवान अपने आप बंद मिल जाएंगे, ये एक बात है, और इस बात से प्रेरित होना कि जो कुछ हमको करना है वह अपने लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, तारीफ के लिए नहीं, वह भगवान के लिए है, तब हम उस मार्ग पर चलेंगे जिसे हम कर्मयोग का आरंभ कह सकते हैं। गीता में जो इसकी चर्चा आरंभ होती है वह एक समस्या को लेकर के आरंभ होती है, समस्या यह है, अर्जुन की समस्या से गीता का आरंभ होता है, और अर्जुन को श्री कृष्ण सबसे पहले उसके उसके शोक को दूर करने के लिए एक उद्बोधन करते हैं। अर्जुन शोकान्वित है, आंसुओं से भरी हुई उसकी आंखें, शोक संविग्न मानस अर्जुन को कहा गया है, शोक संविग्न मानस। और वहां अर्जुन के मन में विरक्ति आती है कि राज्य की मुझे जरूरत नहीं है, धन की मुझे जरूरत नहीं है, भोगों की मुझे जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बड़ी अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन तुम शोक में डूबे हुए कह रहे हो। शोक की चेतना तो बड़ी निकृष्ट चेतना होती, शोक संविग्न मानस। तो फिर शोक क्यों होता है? मृत्यु से उसका संबंध है और सर्वनाश से उसका संबंध है और व्यक्ति के जो आपसी संबंध है उससे उसका संबंध है। उसको दूर करने के लिए एक उद्बोधन होता है कि देखो, शरीर का तो नाश होगा ही, लेकिन जो अविनाशी है उसका नाश होता नहीं, हो सकता नहीं। तो एक अविनाशी तत्व की ओर श्री कृष्ण अर्जुन की चेतना को ले चलते हैं। और वो जो है वो केवल एक विचार नहीं है, वो केवल एक मान्यता नहीं है कि तुम अविनाशी हो और तुम्हारा जन्म नहीं, तुम्हारा मरण नहीं, तुम्हारा बुढ़ापा नहीं। ये तो विचार हुए, ऐसे विचार हम सवेरे से शाम तक करते रहे, लेकिन शोक आएगा तो आएगा, डूब जाएंगे शोक में। ये एक बोध है और यह बोध एक आध्यात्मिक बोध है। उस बोध में जागरण हमारा होगा तो हम शोक मुक्त होंगे। वह बोध है हमारी चेतना हमारे शरीर से ऊपर, हमारे मन से ऊपर, इंद्रियों से ऊपर, प्राण से ऊपर, हमारे अंतरात्मा में स्थित हो। वह अंतरात्मा जो है उसके लिए गीता का शब्द है देही, देही नित्यम अवध्योयम। तो यह एक बोध है जिसमें जगना होगा, लेकिन साथ ही साथ श्री अरविंद उसको जगाते हुए कहते हैं, तुम योगस्थ हो जाओ अर्जुन। यह योगस्थ होना उस चेतना में ऊपर उठना, जो चेतना सामान्य चेतना नहीं है, शरीर की चेतना नहीं है, मन की भी नहीं है, ऊपर की चेतना है, अंतरात्मा की चेतना है। साथ ही साथ कहते हैं कि योग में स्थित होकर के तुम कर्म करो, और योग में स्थित हो जाने को योगनिष्ठ भी कहा जाता है। और वो एक शब्द है गीता का बड़ा विख्यात, स्थित प्रज्ञ होना। अर्जुन पूछता है, विस्तार से पूछता है श्री कृष्ण, ये स्थित प्रज्ञ कैसे बैठता है, कैसे चलता है, क्या उसका व्यवहार है, कैसे बोलता है, इत्यादि इत्यादि। श्री कृष्ण उसकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन बाहरी लक्षण कोई नहीं बताते। ये नहीं बताते कि इस आसन से बैठता है वो जल्दी चलता है या दौड़ता है, वो कैसे बैठता है नहीं बैठता है, ये इसकी चर्चा नहीं करते। वह भीतर से क्या होता है, कैसा होता है, उसकी चर्चा करते हैं। और इसकी इतनी प्रशंसा है योगनिष्ठ हो जाने की या स्थित प्रज्ञ हो जाने की, इतनी प्रशंसा है कि इसको श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, यह ब्राह्मी स्थिति है अर्जुन, इस स्थिति को प्राप्त करके कोई भी व्यक्ति मोहित नहीं होता। अब अर्जुन के मन में एक प्रश्न बड़ा बेचैन करने वाला, कृष्ण एक और आप प्रशंसा कर रहे हैं बुद्धि योग की, बोध जो हमें अपने अंतरात्मा से जोड़ दे और हम बिल्कुल सर्वस्व सबसे ऊपर उठ जाएं, शांत हो, किसी प्रकार का कोई हमारे मन में कोई विकार न हो, और कहते हैं कि ये कर्म करो, घोर कर्म है ये, कर्म करने का अर्जुन को कर्म करना क्या है, लोगों को मारना है, लड़ना है, धनुष बाण चलाना है, युद्ध करना है। तो अर्जुन के मन में बड़ी परेशानी उत्पन्न होती है और कहता है कि अगर आप बुद्धि को श्रेष्ठ कह रहे हैं, योग बुद्धि को, तो मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं, ये तो एक व्यामिश्र है कृष्ण, ये कन्फ्यूजन में डालने वाली बात है, आप मुझे थोड़ा समझा के बताइए। और केवल समझा के नहीं, उनमें से एक बात कहिए, मैं बुद्धि युक्त हो जाऊं या कर्म करूं, तब एक अवसर होता है और एक विकास होता है एक बहुत बड़ी थीम का, एक बहुत बड़े सत्य का। वह है कर्ममय जीवन। और कर्म जीवन केवल साधारण नहीं, कर्म जीवन साधारण तो है ही, लेकिन कर्म जीवन हमारा योग युक्त जीवन हो उसका आरंभ होता है। और जब आरंभ होता है तो सबसे पहले जो बात श्री कृष्ण कहते हैं वो है कि देखो अर्जुन, ठीक से यह समझो कि कर्म बांधता है तब जब वह यज्ञार्थ नहीं होता। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। अब भाषा बड़ी सीधी है लेकिन थोड़ी कठी हुई। यज्ञ के निमित्त जो किया हुआ कर्म है उसका कोई परिणाम, दुष्परिणाम, सत्परिणाम इत्यादि नहीं होगा। और अगर यज्ञ की भावना से कोई कर्म नहीं हुआ है तो चाहे वो मेडिटेशन हो और चाहे वो परोपकार हो, चाहे दूसरों की सेवा हो, चाहे गुरु के चरणों का, वो सब बांधने वाला होगा। श्री कृष्ण की वाणी ये है। ये जो यज्ञ है ये क्या है? यहां फिर भारतीय हम लोगों के लिए एक कठिनाई, यज्ञों से, यज्ञ से हमारा परिचित है, परिचय है कि अनेक अनेक अवसरों पर हम अपने यहाँ हवन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, अग्नि होती है, पंडित जी को बुलाते हैं, पुरोहित को बुलाते हैं, वो मंत्र पढ़ते हैं, अग्नि प्रज्वलित होती है, सामग्री होती है, मंत्रों का पाठ करके स्वाहा 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 ये होता है, इसको हम कहते हैं यज्ञ, ये हमारा परिचय। किंतु ये परिचय सहायक बनता है इस तरह से कि हम समझे कि हो क्या रहा है। ये अति परिचित है लेकिन अर्थ क्या है? वहां गीता में विस्तार से यज्ञ का अर्थ, यज्ञ का अर्थ अभिप्राय और उसका रहस्य बताया। श्री अरविंद ने एसेज ऑन द गीता में यज्ञ के और कर्म के संबंध को लेकर के श्री अरविंद सैक्रिफाइस शब्द का प्रयोग करते हैं। यज्ञ के लिए अंग्रेजी का शब्द है सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस का अर्थ होता है मेकिंग सेक्रेट बाय ऑफरिंग। सैक्रिफाइस का एक सामाजिक अर्थ हमारे मन में है, और सैक्रिफाइस का एक वो भी अर्थ है कि किसी पशु की बलि दे दी तो सैक्रिफाइस कर दिया, कोई और बलि दे दी तो उसको सैक्रिफाइस कर दिया, वो भी एक अर्थ है। लेकिन श्री अरविंद विस्तार से हमको बताते हैं, और केवल एसेज ऑफ द गीता में नहीं बल्कि सिंथेसिस ऑफ योग में कई चैप्टर्स वो सैक्रिफाइस को लेकर के देते हैं, उनकी भाषा श्री अरविंद की। द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस is the common divine action thrown into the world in its beginning as a symbol of the solidarity of the universe. गीता की भाषा है सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसवश्वद्धवम् एष गोस्तिष्ठकामत् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। गीता की भाषा, गीता का ने अनुवाद किया है, समझाया है, बताया है, विस्तार किया है, और एक अपने माने हमारे आपके लिए मॉडर्न व्यक्ति के लिए एक एक वाक्य में द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस कहते हैं। द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस is the common divine action thrown into the world in its beginning as a symbol of the solidarity of the universe. और फिर विस्तार से बताते हैं कि क्या है ये यज्ञ, क्या है हमारे आपके लिए। कुछ जो आधुनिक शब्द हैं या आधुनिक कुछ विचार हैं वो सहायक बन सकते हैं। एक जगह श्री अरविंद उसको बताते हुए कहते हैं, बहुत विस्तार से बताते हैं, एक जगह प्रयोग करते हैं कॉस्मिक कॉमर्स। इस विश्व में जो निरंतर चल रहा है और आरंभ से चला चला आ रहा है वो क्या नियम है? हम और आप साधारण प्रकार से जब पढ़ते हैं तो एक नियम नहीं, हजारों नियम है। फिजिकल लॉज हैं, बायोलॉजिकल लॉज हैं, बोटैनिकल लॉज हैं, साइकोलॉजिकल लॉज हैं, लॉज आफ्टर लॉज आफ्टर लॉज, और अभी रिसर्चेस चल रही हैं वो लॉज क्या है। श्री अरविंद एक लॉ की चर्चा करते हैं, लॉ ऑफ सैक्रिफाइस, यज्ञ का एक विधान है। वह क्या है? कॉमन डिवाइन एक्शन, एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसा भगवत विधान है जो सारी सृष्टि में छाया हुआ है, सब में ओत प्रोत है, सब में व्यापक है, सब पर लागू होता है। कॉमन डिवाइन एक्शन थ्रोन इंटू द वर्ल्ड, थ्रोन इंटू द वर्ल्ड, संपूर्ण सृष्टि उससे चल रही है। अगर वह नियम निकाल दिया जाए तो सृष्टि सृष्टि नहीं होगी, सृष्टि चलेगी ही नहीं। द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस इज दैट लॉ थ्रोन इंटू द वर्ल्ड इन इट्स बिगिनिंग एज ए सिंबल। हाउ टू सी इट, कैसे देखें कि क्या नियम है ये? वहां है एक सिंबल ऑफ द सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स। अब इस यूनिवर्स को जो कुछ भी हम देखते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, उसकी सहायता से हम शायद उस नियम की ओर चलेंगे। ये संपूर्ण सृष्टि जिसको हम कह रहे हैं सृष्टि, ये एक दृष्टि से हजारों लाखों अनगिनत वस्तुओं का एक समूह मात्र। पृथ्वी को ले लें, ये पृथ्वी ही अनंत 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 समूह है। कितने कितने जीव हैं, कितनी घटनाएं हैं, कितने व्यवहार यहाँ पे हो रहे हैं। मनुष्य की बात नहीं है, मनुष्य का जीवन तो बहुत ही सुकड़ा हुआ है, बहुत छोटा है। संपूर्ण पृथ्वी के जीवन को लेंगे तो न जाने कितने रहस्य उसमें दिखाई पड़ेंगे और कितने नियम हैं। लेकिन ये पृथ्वी कुछ नहीं है जब संपूर्ण विश्व को लेते, ये पृथ्वी स्वयं एक बिंदु के समान है। ये सारी सृष्टि जितने निहारिकाएं हैं, जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने सोलर सिस्टम्स हैं, उन सब में हजारों लाखों अनगिनत मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन फॉर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स एंड नोबडी नोज हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू। वन इज लॉस्ट, लगता है कि हम खो गए बिल्कुल। हम जब चिंतन करने लगते हैं तो विश्व की इतनी विशालता हमारे सामने आती है कि हमको खुद बोध नहीं होता, हम खो जाते हैं। लेकिन श्री अरविंद एक शब्द का प्रयोग करते हैं, सॉलिडेरिटी। सब विश्व में, पूरे विश्व में सॉलिडेरिकली, हिंदी क्या शब्द लू मैं तो जानता नहीं, हिंदी शब्द एक एकता कही ठीक है, एक एक संयुक्त तत्व है सबको एक में बांधे रखने वाला एक रहस्य। संपूर्ण सृष्टि हजारों लाखों अनगिनत मिलियंस ऑफ थिंग्स, मिलियंस ऑफ लॉज, मिलियंस ऑफ प्रोसेसेस, उन सबको एक साथ बांधे रखने वाला कोई सत्य है, उन सबको एक सूत्र में रखने वाला। वो एक सूत्र में बांधने वाला सत्य जो है वो है सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स। वो सॉलिडेरिटी कैसे मेंटेन है, क्या है, क्या नियम है उसका? तो उसका नियम श्री अरविंद कहते हैं, इट इज द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस, द लॉ ऑफ सेक्रीफाइस। ये फिजिकल लॉ नहीं है, बोटेनिकल नहीं है, साइकोलॉजिकल नहीं है, सोशल नहीं है, रिलीजियस नहीं है, यह एक परम तत्व है या एक परम विधान है जिसको यज्ञ विधान कहा जा सकता है गीता की भाषा में। वह यज्ञ विधान ही हमें कर्म योग में प्रवेश कराने का मंत्र है, आरंभ वहां से होता है। तो उसको जब श्री अरविंद के इन सब ग्रंथों को पढ़ने लगते हैं तो चीज खुलती है, धीरे धीरे करके खुलती है। वो जो खुलती है तो उसमें सबकी एकता, सारे विश्व की एकता, वो जो एकता है वो ऐसा नहीं कि सब मिट्टी के बने हुए हैं, वो एकता ये नहीं कि सब मैटर के बने हुए हैं, वो एकता ये भी नहीं है कि एक ही एनर्जी है, वो एकता है किसी एक विधान की। वो विधान बड़ा अद्भुत विधान है। वो विधान यह है कि सृष्टि में कोई भी वस्तु अपने लिए नहीं है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी घटना अपने आप में नहीं है, वह अपने को दे रही है। वह अपने आप को, साधारण प्रकार की उदाहरण लें तो एक वृक्ष, हम जानते हैं वृक्षों का जन्म होता है, बड़े होते हैं, अंकुरित होते हैं, फिर बड़े होते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर फल फूल उसमें आते हैं। आरंभ कहां से होता है? एक बीज होता है। किंतु वह बीज अगर अपने को बनाए रखे तो कभी अंकुरित नहीं होगा। वह बीज अपने को देता है, आत्मनिवेदन, self-offering, all that is going on, everything, every being, is in a process of self-giving. Self-giving is the law of yajna, atmadan, atmanivedan, apne aap ko dena. मैं कह रहा था कि बीज अगर अपने आप को बनाए रखे तो अंकुरित नहीं होगा, और अगर अंकुर अपने आप को बनाए रखे तो उसमें विकास नहीं होगा, और एक एक पत्ती उसमें से जो निकलती है या फिर आगे बढ़ता है, कोई भी वृक्ष की कोई भी एक दशा अगर अपने आप को बना के रखना चाहती हो कि जैसा मैं हूँ, जैसी मैं हूँ वैसी ही रहूंगी, तो विकास नहीं होगा. अद्भुत रहस्य है कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कण, प्रत्येक उसका कोषाणु, प्रत्येक दशा, प्रत्येक क्रिया अपने आप को दे रही है. किसको दे रही है, किसको दे रही है, ये कोई सामाजिक बात नहीं. जिससे वह अपने आप, अपने आप की सत्ता बनाए हुए है, जिससे वो अपने आप को बनाए हुए है, उसी को वो दे रही है. जन्म किसी, सबका जन्म कहां से होता है? जन्म वहां से होता है जहां से पोषण होता है. जिससे जन्म होता है उसी से पोषण होता है, और उसी के प्रति हमारा जीवन चलता है, उसी के निमित्त चलता है. तो हमारा संपूर्ण जीवन एक प्रकार से नैसर्गिक नियम के अनुसार, नैसर्गिक विधान के अनुसार हमारा जीवन यज्ञमय है. ऑल लाइफ इज यज्ञ. श्रीअरविंद की भाषा, ऑल लाइफ इज योग. गीता की भाषा, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति. यज्ञमयी सृष्टि है, कोई भी वस्तु अपने लिए नहीं है, अपने लिए हो नहीं सकती. कोई भी वस्तु, कोई भी घटना, सब अपने आप को नित्य निरंतर दे रहे हैं, और देने में ही उनका विकास हो रहा है. अपने आप को देना ही विकास का मंत्र है. अपने आप को देना ही उसके साथ एकता का अनुभव करना है जिससे हमारा हमारा उद्भव हुआ है, जिससे हमारी सत्ता है. तो हमारी सत्ता, हमारी सबकी सत्ता कहां से आ गई, किस से निर्माण हुआ, किसने हमको जन्म दिया? जन्म दिया मेरा स्थूल जन्म दिया वाली बात नहीं है. कहां से हमारी सत्ता आई, वहां रहस्य है. हमारी समझ में आज आए तो, नहीं आए तो, सत्य यही है कि हमारा अस्तित्व, हमारी सत्ता भगवान के अधीन है. भगवान से ही हमारा जन्म होता है, और भगवान के ही अधीन हमारा विकास होता है, और भगवान के निमित्त ही हमको जीना है. तो यह जो सत्य है कि संपूर्ण जीवन हमारा एक प्रकार से आत्मनिवेदन है, अपने आप को देना है, सेल्फ ऑफरिंग है, यही है एक ऐसा नियम जिसके अधीन हम अपनी सारी वृत्तियों को ला सकते हैं. हमारा जितना कर्म है, चिंतन, भावना, संकल्प करना, कार्य करना, इंद्रियों से कार्य करना, अपने जितने भी हमारे सामर्थ्य के उपयोग हैं, अपने सामर्थ्य के उपयोग से जो कुछ भी हम करते हैं, वह सब यज्ञमय हो. यह तब होगा जब हमारे भीतर से अहंकार और स्वार्थ और कामना की भावना धीमी होगी, बिटेगी. जब तक हम अपने कामना लिए हुए हैं, तब तक हम कैसे दूसरों को, किसी को ऑफर करेंगे? जब तक हम ही सभी कुछ, सब कुछ हैं, तब तक हम कैसे आत्मनिवेदन करेंगे? अगर हम ही सब चीज के भोक्ता हैं और हम ही सब कुछ हैं, तो हम कैसे अपने जीवन को यज्ञ में बनाएंगे? तो पहली आवश्यकता यह है कि हमारी बुद्धि यह समझे, बुद्धि यह समझे माने मान ले नहीं, इसको जाने. जान के मानना और मान के जानना दोनों जरूरी होगा. हमारी चेतना इस सत्य में उठे, जगे कि हमारा अस्तित्व केवल हमसे नहीं है. ये बात कठिन नहीं है, हमारा देह, हमारे कोषाणु, हमारा हृदय, हमारे फेफड़े, हमारा भोजन, हमारी खाने की वृत्ति, हमारा चलना फिरना, बात करना, ये किस ऊर्जा से चल रहा है? हमारी ऊर्जा से हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी ऊर्जा से हम अपना नहीं खाना खाते हैं, वे ऊर्जा कोई विश्वव्यापी है। तो जिस ऊर्जा से किसी भी वृत्ति का पोषण होता है या किसी भी वृत्ति का जन्म होता है, उसी के लिए वह वृत्ति अपने को एक प्रकार से आहुति दे दे, वह होगी यज्ञ की प्रक्रिया। तो यह मानना या समझना कि हम एकाकी, दूसरों से विच्छिन्न, भगवान से अलग, सृष्टि से अलग, सृष्टि के नियमों के असंबद्ध हम कुछ हैं, यह मिथ्या है, यह अज्ञान है, यह भ्रांति है। इस भ्रांति को हम अपने मन से दूर करें। इसके साथ साथ हम रिकॉग्नाइज करें, यह समझें कि हमारा एक एक कर्म, कोई भी कर्म हो, छोटे से छोटा कर्म, श्वास लेना भी एक कर्म है, भोजन करना भी एक कर्म है। कर्म का अर्थ यह नहीं है केवल कि हमें गवर्नमेंट कैसे चलानी है, या हमें कोई इंडस्ट्री कैसे चलानी है, या हमें कोई मूवमेंट कैसे चलाना है, केवल इतना अर्थ नहीं है। जो कुछ भी छोटे से छोटा कर्म, छोटे से, श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, अवर कॉमनेस्ट एक्टिविटी, कॉमनेस्ट एक्टिविटी, ही राइट्स लाइक दिस, अवर कॉमनेस्ट एक्टिविटी मस्ट अस्यूम दिस कैरेक्टर। कॉमनेस्ट एक्टिविटी, वहां साफ लिखते हैं, व्हेन वी ईट लेट अस फील दैट वी आर ऑफरिंग द फूड टू द प्रेजेंस विद इन। हमारा कर्मयोग भोजन में, स्नान में, व्यायाम में, ऑफिस में, अपना काम करने में, खेती में, इंडस्ट्री में, सब जगह हमारा कर्मयोग आरंभ हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात को समझें कि हम विच्छिन्न नहीं हैं, असंबद्ध नहीं हैं। हम विच्छिन्न और असंबद्ध और स्वतंत्र हो नहीं सकते। हम संपूर्ण सृष्टि के साथ एक हैं। संपूर्ण सृष्टि का विधान ही हमारे भीतर से कार्य कर रहा है, और संपूर्ण सृष्टि का विधान कार्य कर रहा है। यह कोई सामाजिक तंत्र नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति अपने आप को समाज के अधीन माने। व्यक्ति समाज के अधीन नहीं, व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि और प्रकृति के स्वामी भगवान स्वयं, उनके अधीन है। उनसे ही मनुष्य का जन्म हुआ है, उनसे ही मनुष्य की प्रक्रिया चल रही है, या मनुष्य का विस्तार चल रहा है, विकास चल रहा है, और उन्हीं से उसका सस्टेनेंस होता है। उन्हीं भगवान के प्रति अपने समस्त कर्म को वह निवेदित करे। हम अपने कर्मों को कैसे करते हैं यह हम जानते हैं। हमारा प्राय हमारा सारा कर्म, चाहे वो व्यक्तिगत हो और चाहे वो समाजगत हो और चाहे वो ऑफिस का हो, खेती का हो, हम सभी कर्मों को अपनी आकांक्षा से, अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम करते हैं। कर्मयोग का आरंभ कहाँ होगा? इस समझ से, इस बोध से कि हमारा जीवन, समाज का जीवन, सृष्टि में जो कुछ हो रहा है, प्रकृति का जो कुछ विधान है, वह सब भगवान के अधीन है। भगवान से ही प्रकृति चलती है। गीता की वाणी, मत्तः सर्वं प्रवर्तते, सब कुछ मैं ही हूं। इस बोध को, अगर यह बोध नहीं है तो मान्यता के रूप में, मान्यता अगर नहीं है तो विश्वास के रूप में, विश्वास है, मान्यता है, श्रद्धा है, या जितना भी बोध हो सके, इस बोध को अपने भीतर हमें जगाना है कि हम अकेले नहीं हैं, हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनी कामनाओं के लिए नहीं हैं। हमारे भीतर कर्म की जितनी भी क्षमता मिली हुई है, चाहे वो स्थूल देह की क्षमता हो, चाहे चिंतन की क्षमता हो, चाहे भावना की क्षमता हो, तो सारी क्षमता जो हमें अनेक प्रकार की वृत्तियों में प्रवृत्त कर देती है, जो सारी क्षमता उसका आधार है, उसका सूत्र है, उसका स्रोत है भगवान स्वयं। तो भगवान की ही शक्ति से हमारा जीवन संचालित है, इसलिए भगवान की ही शक्ति के विधान को पूरा करने के लिए हमारा सर्व जितने भी कर्म है वो सब समर्पित हो। गीता का आदेश, श्री कृष्ण का आदेश अर्जुन के लिए होता है, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पण। अर्जुन, जो कुछ तुम करते हो, जो भी तुम्हारे भीतर विचार उत्पन्न होता है, जो भी तपोभाव आता है, वो सब तुम मेरे अर्पित करो। तो हम भगवान के प्रति हृदय से, भावना से, चिंतन से, व्यवहार से अपने आप को समर्पित करें प्रत्येक कर्म में, केवल एकाग्र में, एकाग्र होकर के ध्यान में नहीं। ध्यान में समर्पित होना जरूरी है, भावना में समर्पित होना जरूरी है, भक्ति भाव में जगना बहुत सहायक होता है, लेकिन प्रत्येक कर्म हमारा, हमारा बोलना, उठना, चलना, फिरना, ऑफिस चलाना, जितना भी कर्म है वह हमारे लिए नहीं है, कर्म समाज के लिए भी नहीं है, कर्म भगवान के निमित्त है। भगवान का ही नियम यह है कि संपूर्ण सृष्टि में एकता हो, संपूर्ण सृष्टि में व्यापकता हो, एकबद्धता हो। कि जो एकबद्धता है वह अपने आप में रहने में नहीं है, वह अपने आप को निवेदित कर देने में है। सेल्फ ऑफरिंग, सेल्फ ऑफरिंग, सेल्फ ऑफरिंग। वो हमारा अभ्यास पूरा शुरू से ही नहीं हो जाता, धीरे धीरे करके अभ्यास करने की आवश्यकता पड़ती है। और फिर हर एक व्यक्ति अपने अपने लिए अपना अपना अभ्यास बना सकता है, कैसे आरंभ करे। सत्य यह है कि यह मानना, समझना, स्वीकार करना कि हम अपने आप में नहीं है, हमारी शक्ति, हमारा देह, हमारा प्राण सब कुछ भगवान से है, भगवान के निमित्त ही है, जो कुछ हम करें भगवान के निमित्त करें, इसको धीरे धीरे करके अपने जीवन में उतारना है। माता जी का दो शब्दों का एक मंत्र इस पूरे कर्मयोग के लिए, वो शब्द आपने सबने सुने हैं, लेकिन सुनना एक बात है, उन शब्दों को हम, दो ही शब्द हैं या तीन कह सकते हैं, रिमेंबर एंड ऑफर। ये मंत्र है, रिमेंबर एंड ऑफर। रिमेंबर द ट्रूथ, रिमेंबर द डिवाइन, रिमेंबर योर सेल्फ, रिमेंबर व्हाट। रिमेंबर का अर्थ बहुत व्यापक है, किसको याद करना है, सर्वस्व को। वह सर्वस्व है स्वयं भगवान, उसी के अधीन सब कुछ। उनका स्मरण करें और अपने आप को, अपनी प्रत्येक क्रिया को, प्रत्येक वृत्ति को, प्रत्येक संकल्प को, प्रत्येक विचार को हम उनके चरणों में निवेदित करें, तो संपूर्ण जीवन हमारा कर्म से, कर्म योग से युक्त हो जाएगा। यह एक संकेत मात्र है और हम, माता जी जी संकेत करती हैं, श्री अरविंद जी बताते हैं, हम के विद्यार्थी हैं, हमारे लिए संभव है कि हम धीरे धीरे करके इन बातों को गहराई से समझें और जीवन में धारण।